हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सातवें स्कंद में, सातवें अध्याय में प्रहलाद महाराज अपनी माता कयादु के गर्भ में भागवत धर्म का श्रवण किया। उसके अंतर्गत आज हम 19-20 श्लोक का या 20-21 जो भी है उस श्लोक का आज पाठ करेंगे। एक भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा में कहा है कि मेरी इस शिक्षा को, कौन सी शिक्षा को, भगवत गीता की शिक्षा को। और भगवत गीता की शिक्षा भी भागवत धर्म है, क्योंकि भगवान ने दिया है तो भागवत धर्म है। श्रद्धालु को बताना और श्रद्धालु को मत बताना, ये कहा है ना। प्रहलाद महाराज ने जब उनके पिता ने पूछा हिरण्यकश्यप ने तुम कहाँ से सीख के आए हो, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, श्रद्धा नहीं थी। उनके दोनों गुरु शंड और अमरक ने पूछा तू कहाँ से सिखा के आया, हमने नहीं सिखाया, नहीं बताया। और कारण बताए कि अपने आप कोई नहीं सीख सकता है, किसी के सिखाने से नहीं सीख सकता है, बहुत से कारण बताए, परंतु असली कारण बताया ही नहीं। पर जब सहपाठियों ने प्रहलाद से पूछा कि हमारे गुरु ने तो नहीं पढ़ा है, आप कहाँ से सीख के आए, तब उनको बता दिया, क्योंकि वो श्रद्धालु थे, अभी तक वो बिगड़े नहीं थे। तो एक तो इससे ये सिद्धांत स्थापित होता है जो प्रहलाद महाराज की शिक्षा का महत्वपूर्ण है, कुमारम आचरित धर्म भागवतां ही। जब बच्चा 5 वर्ष का है ना, तभी उसको भागवत धर्म सिखा देना चाहिए, क्योंकि तब वो श्रद्धालु नहीं होता है, नास्तिक नहीं होता है, कामी नहीं होता है, ईर्ष्यालु नहीं होता है, उसमें ये सब दोष नहीं होते हैं। तो भागवत धर्म उस वक्त सिखाना चाहिए। अब हमारे पास ये प्रणाली समाप्त हो गई है, इसलिए भागवत धर्म उतना शक्तिशाली रूप से जो है विश्व में व्यापक नहीं है। प्रभुपाद ने इसलिए गुरुकुलों की स्थापना की कि बचपन से ये सिखाया जाए। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समाज के सुधारने के लिए या मानवता के नापदंडों को जो है मर्यादा में रखने के लिए अति आवश्यक है, परंतु ये इस वक्त बिगड़ा हुआ है। और दूसरा सिद्धांत स्थापित होता है, ये प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को बता दिया मैं कहाँ से सीख के आया हूँ। उत्तर क्या दिया, भगवान नारायण के साक्षात शिष्य नादेव ऋषि नारद मेरे गुरु है। तो बच्चों ने कहा आपके गुरु वो कहाँ है, आप तो हमारी उम्र के हैं, हमारे साथ हैं, कहाँ आपको सिखाया, कब सिखाया। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि मैं मेरी माता कयादु के गर्भ में था, मेरा पिता तपस्या करने चले गए थे, और देवराज इंद्र मेरी माता का अपहरण करके और मुझ गर्भ स्थित शिशु का भ्रूण हत्या करना चाहते थे, लेकिन देवऋषि नारद ने परंतु मेरी रक्षा की। देवऋषि की कृपा से, इंद्र के कोप से मेरी रक्षा हो गई और मेरी माँ और मैं देवऋषि नारद के आश्रम में रहे। अब साधु के आश्रम में तो हरि कथा ही होती है, नारद जी और क्या करेंगे, कथा बताते थे। तो मेरी माँ भी सुनती थी, तो मेरी माँ सुनती थी तो मैं गर्भ में सुनता था। अब ये सूक्ष्म तत्व है बहुत, ये जो दिव्य ज्ञान है, जो भगवान का नाम है या दिव्य ज्ञान है, इसको कोई संसार की बाधा रोक नहीं सकती। और जीव आत्मा सच्चित आनंद है, ऐसा नहीं है जीव आत्मा जब बच्चे में होता है तो उसमें ज्ञान होता है और जब बड़ा होता है तब ज्ञान होता है, ऐसा नहीं, वो तो सच्चित आनंद है। अब हम तो तीसरे स्कंद भागवत में पढ़ते हैं कि जीव गर्भ में कुछ कोई कोई भाग्यशाली जीव गर्भ में परमात्मा का दर्शन करके उसको प्रार्थना भी करते हैं, तो इसका मतलब उसको ज्ञान होता है ना। तो वो बच्चा प्रहलाद कहता है मैं मेरी माँ के गर्भ में जो देवऋषि नारद ने भागवत उपदेश दिया वो मैंने सब सीख लिया। मेरी माता एक तो स्त्री के नाते और दूसरा अब असुरकुल में वो उसको जो सेवाएं करनी पड़ रही है मेरे पिता की और समाज की, इसलिए उनको तो इसकी विस्मृति हो गई, भूल गई। इसका अर्थ ये है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो और भक्तों के संग में न रहे और उसका साधन में न लाए तो वो भूल जाता है, परंतु मेरे को नहीं भूला। भूल सकता था लेकिन मेरे को भूला नहीं, अभी तो मैं बच्चा ही हूं, अभी तो मेरे को याद ही है। तो दूसरी शिक्षा जो इससे बहुत महत्वपूर्ण ग्रहण करनी चाहिए और विशेष रूप से हमारी जो नवयुवत नवयुवतियाँ बालकियाँ हैं जिनका विवाह होता है, उनको जब गर्भधान संस्कार करके गर्भ धारण करें तो ये प्रहलाद महाराज के समाचार को याद रखे। अभिमन्यु पुत्र अभिमन्यु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के विचारों को याद रखे कि माँ के गर्भ में शिक्षा होती है संस्कारों की। माँ के गर्भ से ही बहुत संस्कार प्राप्त हो सकते हैं, शिक्षा प्राप्त हो सकती है। तो वो 9 महीना उसको अच्छा हो के हरि कथा हरि भक्तों का संग हरि दर्शन ऐसे वातावरण में हरि धाम में रहे तो उस बालक के में अच्छे संस्कार आने की संभावना है। ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब क्या शिक्षा ग्रहण कही तो उसमें कल आपने सुना था विशेष रूप से आत्मा शरीर से अलग है, जैसे पेड़ के फल आदि चले जाते हैं पेड़ रहता है, भाई फूल निकलते समय में पत्ते निकलते हैं फल निकलता है वो चला जाता है पेड़ रहता है, ऐसे आत्मा रहती है शरीर जो है बदलते रहते हैं। एक उदाहरण ये दिया हुआ, कल ये उदाहरण था ना। हाँ जी कोई आया था कल के? नहीं आया था ना? कल ये उदाहरण था। आज 2 श्लोकों में प्रहलाद महाराज देवऋषि नारद की भागवत धर्म की शिक्षा में 12 लक्षण जो आत्मा के भी है और परमात्मा के भी है, क्योंकि दोनों में भेद तो है नहीं, दोनों सच्चित आनंद है, गुणों में भेद नहीं है, दोनों के लक्षण एक जैसे हैं, परंतु मात्रा में भेद है। मात्रा में भेद है का अर्थ क्या है कि जीव में वो लक्षण जो है वो थोड़े होते हैं, सीमित होते हैं, और भगवान में वो लक्षण असीम होते हैं। अंतर सिर्फ यह है। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं प्रहलाद महाराज की देवऋषि नारद की शिक्षा के द्वारा, परमात्मा और आत्मा के 12 लक्षण, और ये हमने प्रायः पढ़े हैं भगवद गीता के 2 अध्याय में, वहाँ उनको आत्मा के लक्षण करे सिखा के गए हैं। और इसको क्योंकि चक्रवर्ती पाद ने इसको परमात्मा के लक्षण लिखे हैं सीधे ही, और हर लक्षण के लिए एक उपनिषद का श्लोक दिया है, और श्रील प्रभुपाद ने आत्मा और भगवान दोनों के लक्षण मिला के लिखे हैं कौन से सिद्धांत के अनुसार, अचिंत्य भेद अभेद, जीव और भगवान एक हैं और एक नहीं है। तो आइए इस श्लोक के पहले शब्दों का रसास्वादन करते हैं। आत्मा नित्यो अव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविकार्यः स्वदृक् हेतो व्यापको असंग्य अनावृतः एते द्वादशभि विद्वान् आत्मनो लक्षणै परैः अहम् ममेति असत् विभावा भावम् देहादौ मोह जमत्यज्जे आत्मा नित्या अव्ययः शुद्धा एकक्षेत्रज्ञाश्रयः अविकार्यः स्वदृक् हेतोः व्यापको असंज्ञानावृतः एतद्वादशभि विद्वान् आत्मनो लक्षणै परैः अहम् मम एति असद्भावम् देहादौ मोहजं त्यजेत् आवृत्ति कीजिए आत्मा नित्या अव्यया शुद्धा एका क्षेत्रज्ञाश्रयः व्यापको असंगः अनावृतः देहादो मोहजं त्यजेत् आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्धः एकक्षेत्रज्ञाश्रयः अविकार्यः स्वदृक् हेतोः माताजी आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञाश्रयः अविकार्यः अग्रहेतोः तो असंज्ञः अनावृतः एतद्वादशभिः विद्वानः आत्मनो लक्षणै परैः अहम् ममेति असद्भावम् देहादहो मोहजं त्यजेत् आत्मा नित्याव्ययः शुद्धः अविक्रियः स्वदृग् हेतोः व्यापको असंज्ञानावृतः एकः क्षेत्रज्ञः अविकार्यो स्वदृक् हेतोः व्यापको असंज्ञानावृतः एतैः द्वादश विद्वान् आत्मनो लक्षणौ परैः अहम् ममेति असद्भावम् देहादौ मोहजं त्यजेत् सो 12 लक्षण आत्मा के और परमात्मा के विद्वान जानते हैं, काहे के लिए जानने की जरूरत क्या है, क्यों जानना चाहिए, उसका कारण बता रहे हैं कि ये जानने से विद्वान कहते हैं व्यक्ति मैं और मेरा जो संसार में बंधन का कारण है उससे मुक्त हो जाएगा। अगर ये जानेगा तो असत भाव जो संसार में है, जो असत चीजों को अपना मानता है, उससे मुक्त हो जाएगा। तो जानना इसलिए जरूरी है। अब प्रभुपाद जी के शब्द अर्थ को सुनिए। आत्मा, आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश, नित्य जन्म या मृत्यु से रहित, क्षीण होने अव्यय क्षीण होने की संभावना से रहित, शुद्ध आसक्ति तथा वृत्ति के भौतिक कलमश से रहित। तो हम अगर शुद्ध होंगे तो क्या होना चाहिए हमें, आसक्ति और आसक्ति के साथ दूसरा शब्द क्या है, वृत्ति। आसक्ति और वृत्ति से मुक्त, आसक्ति को राग कहते हैं, वृत्ति को, असल में ये है राग और द्वेष, सही माना में इसके लिए शब्द है राग द्वेष से मुक्त। शुद्ध वो है जो राग द्वेष से मुक्त है। आसक्ति और वृत्ति, वृत्ति तो बहुत अच्छा लक्षण है साधु का, आसक्ति भी अच्छा लक्षण है साधु का। भाई भगवान कहते हैं मुझ में आसक्त तो मई आसक्त मना, उन्हें क्या चाहिए शब्द यहाँ, राग द्वेष से रहित, सही शब्द इसका अर्थ होगा। और प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में इसके लिए शब्द लिखा है शुद्ध, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, राग और द्वेष, सही माना में इसके लिए जो शास्त्रिक शब्द है राग द्वेष से रहित, क्योंकि बंधन तो राग द्वेष से होता है ना। आसक्ति और वृत्ति ये तो अच्छे लक्षण है, ये तो मिला होने चाहिए हमारे अंदर। उनके साथ साथ एक शब्द लिखा है अंग्रेजी में भौतिक आसक्ति से मुक्त, तो भौतिक शब्द यहाँ आया नहीं है हिंदी में है, और भौतिक कलमश से रहित। ये क्या है, शब्द अर्थ ऐसे किया है जैसे लिखा हुआ है कंटामिनेटेड मटेरियल। तो शब्द शुद्ध किसको कहेंगे, हमको शुद्ध होना होगा तो क्या करना पड़ेगा, राग द्वेष से, ये राग द्वेष और अभिनिवेश और अविद्या, ये माया के पांच, क्यों कहते हैं इसको माया के पांच पर्व हैं, कौन से पांच के नाम है यदि कोई सबको याद है, पांच ये राग द्वेष अभिनिवेश विप्रयय और अविद्या, ऐसे ना पांच, अस्मिता, अस्मिता एक अस्मिता है, अस्मिता है बराबर अस्मिता है, ये माया के पांच पर्व हैं। ये ग्यारहवें स्कंद में इसका वर्णन है। माया इन पांच प्रकार से लोगों को मोहित करती है। अब आगे पढ़ रहे, एक अकेला क्षेत्रज्ञ जानने वाला, अतएव भौतिक शरीर से पृथक, आश्रय मूल आधार, अविक्रिय शरीर की तह परिवर्तन नहीं होता, स्वदृक् आत्म प्रकाशित हेतु, समस्त सारी हेतु 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 समस्त कारणों के कारण, व्यापक चेतना के रूप में शरीर में फैला हुआ, असंगी शरीर पर आश्रित न रहकर एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए मुक्त, अनावृत भौतिक पलमश कलमश के द्वारा आच्छादित नहीं। एतही इन सबों के द्वारा द्वादश भी बारह विद्वान व्यक्ति जो मूर्ख नहीं है अपितु वस्तु के यथारूप से परिचित है आत्मनः आत्मा के लक्षणों से परैहि दिव्य अहम मैं ये शरीर हूँ ममा मेरा इस शरीर से संबंध इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है इति इस प्रकार असत्य भावम जीव की मिथ्या धारणा देह आदौ अपनी पहचान भौतिक देह से और फिर अपनी पत्नी संतान परिवार या जाति राष्ट्र इत्यादि से करना मोहजम मोह ज्ञान से उत्पन्न मोहमय ज्ञान से उत्पन्न त्यजेता त्याग देना चाहिए। तो 12 लक्षण आत्मा के इसमें आप सबको अर्थ समझ में आया अच्छी तरह से। आत्मा नित्य अव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदृक हेतु और फिर क्या है व्यापक और असंग और अनावृत। लिख लो ये 12 कोई कागज पेन हो ना याद कर लो ये याद नहीं होंगे बाहर निकलते ही भूल जाएंगे। ये असल में हमारा अपना धन ये है हमारी पहचान ये है। अगर आपसे कोई बाहर जाओ और पूछे कि आपका नाम क्या है और आपको मेरा नाम क्या है तो लोग कहेंगे पागल है। और ये आपके ये आपका नाम है पूरा लंबा चौड़ा आप कौन है बोला मैं आत्मा हूँ मैं नित्य हूँ मैं अव्यय हूँ मैं शुद्ध हूँ मैं एक हूँ मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। ये आपको अगर नहीं आता है तो फिर आपको क्या कहना चाहिए विद्वान नहीं है। विद्वान के लिए प्रभुपाद ने क्या शब्द लिखा है जो मूर्ख नहीं है। इसका मतलब अगर ये नहीं आते हैं तो हम क्या हैं और इस श्लोक को समझते समय आप समझो कि ये हमारे लक्षण है कि आत्मा की अगर लक्षण है और भगवान के लक्षण समझने हैं तो ये हमारा जो सुहृद भगवान है उसके लक्षण है। तो ये हमको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसको केवल आना नहीं चाहिए इसको अनुभूति होनी चाहिए इसकी कि ये हमारी अस्तित्व है स्थिति हमारी ये है तभी हम असल में वो जो असद मोह है उससे मुक्त होंगे। तो ये 12 शब्द ही बाहर निकलते याद नहीं रहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी बताइए क्या हमको क्या समझना चाहिए कि हम विद्वान नहीं हैं। ठीक है ना ये 12 लक्षण पक्के याद करने आज समझ लो कि हम क्या हैं इस श्लोक के आधार पे समझना चाहिए। अब श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इसका अनुवाद पढ़ते हैं। आत्मा परमेश्वर या आत्मा प्रभुपाद जी आत्मा के दो अर्थ लिख रहे हैं सीधे। आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। देखो आत्मा के अर्थ शास्त्र में आपको मिलेंगे शरीर भी मिलेगा मन भी मिलेगा आत्मा भी मिलेगा परमात्मा भी मिलेगा परंतु कहाँ कौन सा इसका अर्थ है वो उस प्रसंग के अनुसार निकालना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले आत्मा की बात हो चुकी है तो ये परमात्मा के लक्षण है ऐसे चक्रवर्ती पाद कहते हैं। उन्होंने साफ लिखा है परमात्मा सीधा। सो अब आत्मा के दो अर्थ कौन से हो गए यहां जीवात्मा और भगवान परमेश्वर या जीवात्मा ठीक है ये दोनों ही आध्यात्मिक है ये आत्मा की परिभाषा प्रभुपाद ने दी, ये दोनों ही आध्यात्मिक है, ये है आत्मा की परिभाषा कि दोनों जड़ नहीं है, दोनों चेतन है। और इसलिए आगे श्लोक इसमें लिखा हुआ है, कौन सा श्लोक, ये जड़ नहीं है चेतन है, कौन सा श्लोक आपको याद आना चाहिए, लिखा है इसमें आगे आएगा, नित्यो नित्यानाम चेतश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान, ये श्लोक है ना कि दोनों चेतन है जड़ नहीं। जब एक शब्द आपके जबान से निकले या आंख से देखो तो कोई ना कोई उसका प्रमाण आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि ऐसा शास्त्र में हमने पढ़ा है, तब आप उसको समझ रहे हो, नहीं तो नहीं समझ रहे हो। प्रमाण उसका आपके दिमाग में अगर आपने पढ़ा है तो एकदम चमकेगा, ऐसे अंदर ना लाइट चमकती है, एकदम चेतन, अरे हाँ नित्यो नित्यानाम चेतन, ये श्लोक इसके साथ मिलता है, तो ये आपके अध्ययन का साधन होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, आध्यात्मिक है, अब लिखते हैं जन्म मृत्यु से मुक्त है, ये किसका अर्थ है, नित्य का, ये नित्य, इसे नित्य की परिभाषा है, जन्म मृत्यु से मुक्त है। तो जन्म मृत्यु किसका होता है, शरीर का। अब लिखते हैं तथा क्षय रहित है, क्षय रहित है किसका अर्थ है, अव्यय, ये अब आपकी भाषा में अव्यय शब्द आपको पता है क्या है, व्यय कहते हैं खर्चे को, आपका व्यय कितना है भाई, 50 का नोट जेब में 30 रुपया खर्च किया तो बाकी 20 बचा, तो ये हो गया अव्यय। और भगवान की आत्मा कैसा है, भगवान कैसा है, अव्यय, कोई उसमें कमी होती नहीं है, जैसे का जैसे रहता है, उसमें कोई क्षय नहीं है, कम नहीं होता है, वो जैसे है वैसे रहता है, तो अव्यय, हाँ क्षय रहित है एवं भौतिक कलमश से भी मुक्त है, ये किसका अर्थ है, शुद्ध भौतिक कलमश से भी मुक्त है। ये बाह्य शरीर का, ये बाह्य शरीर के ज्ञाता है, ये किसका अर्थ है, और सर इससे पहले एक शब्द और है, ये व्यष्टि है, ये व्यष्टि है, ये व्यष्टि शब्द समझ में आता है किसी को, दो शब्द आज याद करो, एक व्यष्टि एक समष्टि, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, समष्टि का मतलब सब, तो व्यष्टि का मतलब अपने शरीर का, व्यष्टि व्यक्तिगत एक, और समष्टि सब, इसको ऐसे समझना चाहिए, मैं मेरे शरीर को जानता हूं तो मैं हूं व्यष्टि ज्ञाता, और भगवान सब शरीरों को जानते हैं इसलिए वो है समष्टि ज्ञाता। तो व्यष्टि और समष्टि का अर्थ आपको समझ में आया, व्यष्टि व्यक्तिगत समष्टि सब, तो ये व्यष्टि शब्द किसके लिए है श्लोक में, एक एक है, और उसके बाद कौन सा शब्द है देखो, क्षेत्र। अब ये क्षेत्र के तो एक पूरा अध्याय है भगवद गीता का, क्षेत्र क्षेत्र के एक पूरा अध्याय है, तो क्षेत्र का मतलब है शरीर, ज्ञ का मतलब है उसको जानने वाला, और भागवत में लिखा है क्षेत्रज्ञ दो हैं, वो गीता में क्षेत्रज्ञ दो हैं, मालूम है ना, क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा, दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, जीवात्मा अपने क्षेत्र का समाचार जानता है, परमात्मा सब क्षेत्रों का जानता है। तो यहां एक का अर्थ क्या लिखा है, व्यष्टि, क्या लिखा है, व्यष्टि, अंग्रेजी में देख लो, एक हा। इंडिविजुअल, प्रभुपाद लिखा एक इंडिविजुअल, ये शब्द प्रभुपाद हमेशा क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं कि ये हमारा अस्तित्व सदा रहता है, कभी लीन नहीं होता, नाश नहीं होता, हम अपने अस्तित्व को कभी भी नाश नहीं कर सकते, व्यक्ति का मतलब है कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ऐसे नहीं है कि भगवान के धाम जाएंगे तो हमारा नाम निशान मिट जाएगा, ये व्यक्ति की परिभाषा है कि हमारा व्यक्तित्व तो सदा रहेगा, ये ठीक है, ये व्यक्ति की परिभाषा, क्यों ये शब्द लिखा है, इसका अर्थ ये है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये बाह्य शरीर के ज्ञाता है, ये किसका अर्थ है, क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र क्या है, बाह्य शरीर, और उसको जानने वाला आत्मा। प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, आधार हैं। आश्रय का अर्थ है प्रत्येक वस्तु के आश्रय और आधार हैं। तो आत्मा इस शरीर का आधार है, आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा, और परमात्मा सारे जगत का आधार है, उसके बिना जगत नहीं चलेगा, तो दोनों का आधार है। ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त हैं। ये किसका अर्थ है? अविकार्य। तो भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? छह परिवर्तन शरीर में होते हैं, मालूम है ना? छह परिवर्तन शरीर में होते हैं। अच्छा, छह शरीर में छह परिवर्तन होते हैं, पर इस टेबल में छह परिवर्तन नहीं होते हैं। ये जड़ है, शरीर भी जड़ है, ये एक अंतर है। इसके लिए कौन सा शब्द है? जिस शरीर में आत्मा है उसमें छह परिवर्तन होते हैं, जिस जड़ वस्तु में आत्मा का प्रवेश है उसमें छह परिवर्तन, और जिस जड़ वस्तु में आत्मा नहीं है उनमें केवल तीन परिवर्तन। दे दोनों में अंतर ये है। अब ये टेबल है, इसको बनाया, थोड़े दिन रहेगा फिर टूट जाएगा। ये बच्चे नहीं पैदा करेगा, करेगा टेबल अपने आप से कुछ और पैदा करेगा? नहीं करेगा। तो छह परिवर्तन उसमें होते हैं जिसमें आत्मा है, और नहीं तो सामान्य भौतिक पदार्थ में तीन ही परिवर्तन होते हैं, बनता है, रहता है और टूटता है। तो ये दोनों में अंतर है। देहधारी जो शरीर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनसोल्ड बॉडी, जिसमें आत्मा है उसमें छह परिवर्तन है, परंतु जिसमें आत्मा नहीं है उसमें केवल तीन ही परिवर्तन है। ये दोनों में अंतर है। वह छह परिवर्तन शरीर में होते हैं क्योंकि आत्मा है। जैसे छोटा बच्चा जन्म ले और आत्मा निकल जाए तो उसमें छह परिवर्तन होंगे, वो बड़ा होगा, बच्चे पैदा करेगा? नहीं करेगा। तो आत्मा है तब छह परिवर्तन, नहीं तो तीन। अब आगे लिखा है ये आत्मा, हाँ सर, ये आत्मा प्रकाशित है, ये समस्त, ये आत्मा प्रकाशित है, ये किसका अर्थ है? स्वयं दृक्, स्वदृक। दृक का मतलब स्व, अपने आप प्रकाशित है, आत्मा को अपना प्रकाश है। इस प्रकाश का अर्थ क्या है? लाइट है, लाइट है। चित्त, चित्त की परिभाषा है, जो अपने आप में ज्ञान से परिपूर्ण है। प्रकाश ज्ञान की परिभाषा होती है, ऐसे नहीं लाइट है, ऐसे लाइट भी है, ज्योतिर्मय है। आत्मा को ज्योति कहते हैं, आत्मा ज्योति है, तो स्वयं प्रकाश है, तो किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं है। और फिर क्या लिखा है? ये समस्त कारणों का कारण है, हेतु, ये समस्त कारणों का कारण है। आत्मा शरीर में सारे कारणों का कारण है, और परमात्मा जगत में सारे कारणों का कारण है। तथा सर्वव्यापी है, ये किसका अर्थ है? व्यापक, सर्वव्यापी है। इन्हीं भौतिक शरीर से कोई स्वरकार नहीं रहता, इस असंगी, इसको भौतिक शरीर से कोई क्या नहीं रहता, कोई स्वरकार नहीं रहता। भौतिक शरीर को छोड़ के चला जाता है, आत्मा चला जाता है, तो कोई उससे लेना देना नहीं है। इतने साल 50 साल शरीर में रहा, 80 साल गया, निकल गया तो देखता ही नहीं है पीछे उसको, कोई उसमें आसक्ति नहीं, बिल्कुल आसक्ति नहीं। और फिर लिखा है अतएव ये सदैव उन्मुक्त रहता है। ये किसका अर्थ है? अनावृत। अनावृत क्या है? लास्ट शब्द क्या है? वो अनावृत का अर्थ है। जैसे भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव ये सदैव उन्मुक्त रहते हैं। उन्मुक्त रहते का मतलब सदैव अनुमुक्त रहते हैं, ये किस शब्द का अर्थ है? असंग के बाद अनावृत। अनावृत किसी से क्या, वह शब्द अर्थ में क्या है अनावृत का? आच्छादित नहीं, इसके लिए यहाँ लिखा है। अतएव ये सदैव उन्मुक्त रहता है। उन्मुक्त का क्या अर्थ है हिंदी में? उन्मुक्त रहता है। उन्मुक्त क्या है? अनावृत है, नॉट कवर्ड बाय मटेरियल कंटामिनेशन। इसका मतलब आत्मा अपने आप प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित नहीं है, ये इसका परिभाषा है। ये मैं ज्यादा समय ले रहा हूं इसको कहने में, परेशानी तो नहीं है? क्योंकि नहीं तो इन शब्दों का ऐसे पढ़ के जाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, कम से कम दोनों को समझ तो ले, थोड़ा दिमाग में आए तो सही। अब ये तो हो गए 12 लक्षण। इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है, उसे जीवन के भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिसमें वो सोचता है मैं ये भौतिक शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। अब तात्पर्य पढ़ने जाते हैं, लंबा है और ये 6 परिवर्तन के भी नाम लिखे हैं। तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। भगवद गीता के 15:7 में कहा गया है, 15:7 में क्या कहा गया बोलिए। ममहिवंश जीवलोके जीव भूत सनातन मनसिष्टानि प्रकृति स्थानी करिष्यति। तो इससे प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, सारे जीव मेरे अंश हैं, अतएव सारे जीव गुणात्मक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान हैं। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि जिसके अंश हैं उसके सारे गुण उसमें हैं। पर क्या शब्द लिखा है? गुणात्मक रूप से। इसका मतलब हाँ, गुणात्मक का मतलब दोनों का गुण एक जैसा है, और वो क्या है? सच्चिदानंद। सत का अर्थ क्या है? सदा रहने वाला। चित का अर्थ क्या है? ज्ञानमय। और आनंद का अर्थ आनंद। दोनों सच्चिदानंद है। अब ये बात हुई गुणात्मक दृष्टि से। और फिर लिखा है जो के समस्त जीवों के नायक अर्थात परम प्रधान है, कौन? भगवान। वेदों में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतस चेतस नाम, यह श्लोक आ गया कि जीव भी चेतन है भगवान भी चेतन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? भगवान एक सबकी इच्छाओं को अनादिकाल से पूरी करता आ रहा है। इसका मतलब जीव आश्रित है और भगवान उसका आश्रय है। जीव इच्छा करता है, भगवान उसकी अनुमति देते हैं पूरा करने की। तो एक स्वामी है एक सेवक है, इसका अर्थ ये हुआ। लेकिन दोनों हैं चेतन, ये श्लोक का भाव है। दोनों चेतन है, एक सेवक है और एक स्वामी है। भगवान प्रधान जीव है, आधीन जीवों के नायक हैं। प्रधान जीव है, आधीन जीवों के नायक है, क्या अर्थ हुआ? वो प्रधान है का मतलब स्वामी है, और अन्य जीवों का नायक है का इसका मतलब जीव सेवक है और वो स्वामी है। चूंकि सारे जीव ईश्वर के प्रतिरूप या अंश हैं, अतएव उनके गुण परमेश्वर के गुणों से भिन्न नहीं होते। जीव के गुण भगवान जैसे होते हैं, जिस प्रकार समुद्र के एक बूंद की रासायनिक संचाह संरचना स्वयं विशाल समुद्र जैसी होती है। ये उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। एक समुद्र के बूंद में देखो कि नमक कितना है, वो 80% है, तो सारे समुद्र में 80%। तो इस दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। और फिर ये उदाहरण हो गया। अब इसकी बात को आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तरह गुण में एकत्व किंतु मात्रा में अंतर होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ भाई? आपके घर में गंगा जल पड़ा है छोटी सी बोतल में, और हरिद्वार में भी गंगा बह रही है, तो आप उसको भी गंगा जल कहेंगे, उसको ही कहेंगे? दोनों में अंतर है कि नहीं है? आपके घर का गंगा जल गंगा का काम करेगा, परंतु उसके अंदर आप डुबकी नहीं लगा सकते, उसके अंदर मछलियां नहीं चल सकती, उसके अंदर नाव नहीं चल सकती, तो दोनों में अंतर है ना। ऐसे ही जीव गुण ऐसे ही है, लेकिन है बेचारा अणु, तो क्या है? और भगवान के भी गुण वही है, लेकिन वो क्या है? विभू। तो एक अणु एक विभू, तो मात्रा में अंतर है, गुणों में अंतर नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई व्यक्ति नमूने के रूप से जीव को समझकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है, क्योंकि ईश्वर के सारे गुण जीवों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो एकत्व होता है, किंतु ईश्वर महान है, जबकि जीव अत्यंत क्षुद्र है। अणोरण्यम महतो महियम कठोपनिषद का श्लोक है। अब यहां इस लाइन में प्रभुपाद ने क्या हमको समझाया, क्या बोला है? हाँ जी, अपने आप को समझने से ईश्वर को समझ सकते हैं। इसको लिख के इसको कहते हैं, जो खंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो हमारे अंदर है वो सारी दुनिया में वही है। तो अपने आप से भगवान को समझा जा सकता है, इसका मतलब दोनों में एकता है, परंतु ये एकता बराबर की नहीं है। उसके लिए दो शब्द कौन से लिखे हैं? भगवान क्या है, हम क्या हैं? हम शूद्र हैं, भगवान महान है। सारे जीव परमाणु से भी छोटे हैं, किंतु ईश्वर महानतम से भी महान है। महानता संबंधी हमारी धारणा को आकाश द्वारा व्यक्त किया जाए। बड़ा किसको हम दुनिया में मानते हैं? ओ, आकाश बहुत बड़ा है, ये आकाश सबसे बड़ा है ना, हम ऊपर देखते हैं तो। परंतु भगवान इस आकाश से भी अनंत गुना बड़े हैं। तो कितने भगवान बड़े हैं इसकी कोई हम गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आकाश को असीम रूप से विशाल मानते हैं, किंतु ईश्वर आकाश से भी विशाल है। इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि सारे जीव अणु से भी छोटे आकार वाले आकार में बाल की नोक के 10,000 भाग के तुल्य, फिर भी जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों में समस्त कारणों के परम कारण होने का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या? इतना छोटा जीव है, इतना छोटा जीव है, लेकिन इतने बड़े शरीर को, हाथी के शरीर को चला रहा है, उसके अंदर जितने कार्य होते हैं सारा कर रहा है, क्योंकि भगवान सब कारणों का कारण है, तो जीव अपने शरीर के सारे कारणों का कारण है। तो ये प्रभुपाद जी हेतु की परिभाषा लिख रहे हैं जो ऊपर है। निस्संदेह जीव की उपस्थिति के कारण ही शरीर का अस्तित्व है, और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के भीतर परमेश्वर के होने से ही भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित परिवर्तन घटित होते रहते हैं। शरीर में आत्मा है तो शरीर उठता है, बैठता है, खाता है, चलता है। ब्रह्मांड में आत्मा है इसलिए ऋतुएं बदलती हैं, सूर्य उगता है, ये सब किसके आ गया? ये वेदों का श्लोक है, सूर्य मेरे भय से उगता है, चंद्रमा मेरे भय से रोशनी देता है, पृथ्वी अपनी जगह पे। तो ये संसार चलता है परमात्मा के कारण, और शरीर चलता है आत्मा के कारण। तो अपने को समझ के भगवान को समझना है, उसी की परिभाषा है। एक शब्द महत्वपूर्ण है, जैसे कि भगवद गीता में 9:4 में बताया है। 9:4 क्या है? मैं सब में हूं, सब मुझ में है। तो भगवान और भक्त भगवान की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान एक है। तो एक की परिभाषा ये है, मतस्थानी सर्वभूतानी नचाहम तेषुम अवस्थितः। प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो चाहे अथवा आध्यात्मिक हो, जिसमें पृथ्वी जलवायु आकाश अग्नि जो भी है, और जीव समस्त आत्मा के पद पर स्थित है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत है, किंतु कोई ये नहीं सोचे कि परम भगवान किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है। इसका अर्थ है भगवान से सब निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान उनके आधार पे जी रहे हैं। भगवान परम स्वतंत्र है। ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतः चेतनमय हैं। जीवों के रूप में हम अपने शारीरिक अस्तित्व के प्रति सोचते हैं, सचेत हैं। इसी प्रकार भगवान विराट दृश्य जगत के प्रति सचेत है। इसका मतलब हमारे को हमारे शरीर का कहीं थोड़ी चूंटी काटती है तो पता लगता है ना, इसको कहते हैं चेतना है। ऐसे सारे ब्रह्मांड में कोई घटित होता है तो भगवान उसके चेतन है। इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर की आत्मा हमारे शरीर में, ब्रह्मांड पूरे की आत्मा गर्भोदक्षाई विष्णु, सारे प्रकृति पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की आत्मा कारुणदक्षाई विष्णु। तो हर एक छोटे छोटे से लेके बड़े तक सबकी अंदर चेतन है, तब काम कर रहा है। चेतन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। और अब इसकी पुष्टि वेदों में इस तरह की गई है, पूरा वेद का मंत्र है। यस्मिन् धियो पृथ्वी चांत्रिक्षम विज्ञातराम अधिकेन विजानीयात। ये पूरा मंत्र है, इसका अर्थ है ये सारे वैदिक आदेश सिद्ध करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा लघु आत्मा दोनों व्यष्टि हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बताया ना पहले, व्यष्टि क्या मतलब व्यक्ति हैं, वो अलग है वो अलग है, दोनों व्यक्ति हैं। ये क्यों प्रभुपाद जी जोर दे के बार बार बता रहे हैं, क्योंकि एक सारे संसार में ज्ञानी लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है और मिल जाएंगे बस, जैसे पानी के समुद्र में नदी मिल गई एक हो गया। इसका खंडन कैसे करते हैं प्रभुपाद जी, इसका खंडन कैसे करते हैं? अरे समुद्र में 9 लाख जलचर आनंद ले रहे हैं, वो समुद्र बन गए क्या? मगरमच्छ समुद्र बन गया क्या? जंगल में समुद्र मौज ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो समुद्र में 9 लाख जीव रह रहे हैं तो हम नदी की तरह क्यों मिल जाएं? हम उसके अंदर 9 लाख जीव बन के क्यों नहीं रह सकते? तो दोनों एक नहीं है, एक नहीं होते हैं। और दूसरा इसका खंडन कैसे करते हैं, अगर तुम नदी हो और समुद्र में एक हो गई, कल फिर गर्मी में मई जून में सूरज टपेगा फिर तुम्हारा पानी ऊपर जाएगा बूंद, इसका मतलब फिर तुम बरसात के रूप में मिट्टी में मिलोगे आकर, तो एक कहां हुए तुम? फिर तुम्हारे को दोबारा होना पड़ेगा ना। एक हलवाई था, उसके दुकान में बड़ी रबड़ी घोटी जा रही थी, तो 2 चूंटे थे। उसने बोला रबड़ी खाने चलेंगे, एक ने कहा देखो बहुत आग के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसके अंदर गए जाएंगे तो पिस जाएंगे, इधर बैठे हैं ये जो हिला रहा है ना तो कोई तो नीचे गिरेगी बूंद, उसी को खा के मजा लेंगे। तो एक चूंटा तो दूर बैठा था जो गिरे उसको खा, एक बोला नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा मैं अंदर जा रहा हूँ, वो कूद के अंदर पड़ा घिसा गया, नाम ही निशान नहीं रहा, तो उसने कुछ मजा लिया क्या? अपना नाम निशान मटाया कुछ सुख मिला क्या? नहीं। तो जो चूंटी बाहर बैठी थी वो तो खा के मौज कर रही थी, एक एक जो गिर रहा था उतना ही बहुत है, जो अंदर गई उसने अपना नाम निशान मिटा दिया। तो ये जो ब्रह्मलीन वाले हैं ये कढ़ाई के अंदर माथा डालते हैं। अब क्या खाया, खाया क्या कुछ हा? अरे उसको ही कोई और खा जाएगा, उसको बेचारे किसी वैष्णो कोई अवैष्णो बना देगा मूर्ख। तो ये गलत हो गया ना, धारणा गलत हो गई ना। तो प्रभुपाद जी यहां वैष्टि शब्द लिखने का परिभाषा ये है। अब 2 मिनट मेरे को पढ़ना पड़ेगा, इस आज का तात्पर्य पूरा करना है, आप रुकिएगा मुझे। हाँ, दोनों व्यष्टि हैं, एक महान है दूसरा क्षुद्र है, किंतु दोनों ही समस्त कारणों के कारण है, दैहिक रूप से सीमित किंतु वैश्विक दृष्टि से असीम। इसका मतलब वैश्विक दृष्टि क्या है? देह दृष्टि से सीमित। और क्या अर्थ है इसका? देखिए मेरे को हिंदी आती नहीं है, मैं हूं क्या कर सकता हूं। हाँ, क्या लिखा है? दोनों क्या है? अंग्रेजी में बहुत मुश्किल, अंग्रेजी में बहुत लिखा है मुश्किल। both of them are kada vatike, the corporeally limited and universally unlimited. Ab ye angrezi itni mushkil hai, hindi wala kahan seedha karega? Hai koi vidwan angrezi ka samjhega? The corporeally limited and universally unlimited. Corporeally limited और universally unlimited. हमको नहीं समझ में आया, या हिंदी में और समझ में नहीं आता, देखो क्या लिख पड़ा. देहक रूप से सीमित किंतु वैश्विक दृष्टि से असीमित. इसका कोई समझा सकता है क्या है ये? एक अपने शरीर के जानकार है और उसका कारण है, और एक सारे संसार का कारण है. ये बहुत अच्छा समझा दिया. हम अपने शरीर को अपने कर्मों से बनाते हैं, और भगवान इस सारी सृष्टि को हमारे सारे कर्मों के कारण बनाता है कि हम कर्म कहाँ भोगेंगे. ये सृष्टि बनाएगा ना भगवान, तो ये इसका भाव है. अब हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम गुरु के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान है, किंतु मात्रा से कभी भी उनके तुल्य नहीं है. अल्पज्ञ व्यक्ति अपने आप को गुणों में ईश्वर के समान पाकर मूर्खतावश ये सोचने लगता है कि मात्रा में भी उनके तुल्य है. उनकी बुद्धि विशुद्ध अविशुद्ध बुद्धिया अर्थात असंस्कृत या कलमश ग्रस्त बुद्धि कहलाती है. जब ऐसे लोग अनेक जन्मों तक परम, अच्छा अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ज्ञानी लोग जो कहते हैं हम और भगवान एक हैं, ये है भौतिक गुणों से प्रभावित, इसलिए इनको बहुत जन्म लगते हैं. फिर प्रभुपाद ये श्लोक लिख रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा. इन ज्ञानियों को बहुत जन्म देना पड़ेगा, तब वासुदेव श्री कृष्ण सर्वत्र सब कुछ है, तब वो महात्मा कहलाएंगे और भगवान का शरण लेंगे. ये श्लोक हो गया. इस प्रकार वे महात्मा बन जाते हैं. यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि वो ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ लेता है, ये जान लेता है कि ईश्वर महान है और आत्मा लघु है, तो वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त माना जाता है. और जब मनुष्य ये सोचता है कि वो भौतिक शरीर है और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु उसकी है, तो वो अहंकार में रहता है. ये अहम मम जहाँ जनस्य मोहो अहम ममेति, ये माया है. इसे अपनी भ्रांत धारणा त्याग कर हर एक वस्तु से पूर्णतः अवगत हो जाना चाहिए. हो गया. तात्पर्य पूरा हो गया, लेकिन हम में से कोई मैं मेरा नहीं छोड़ेगा. एक व्यक्ति के घर में किसी के छत से पानी गिरता था बरसात में. छत मेरी और यहाँ घर आपका, आपके घर में पानी गिरता था, तो घर में खड्डा हो गया. उसने पंचायत को इकट्ठा किया कि देखो इसके घर का पानी का नाला मेरे बरसात में गिरता है, मेरे सारा फर्श टूट गया है. पंचायत ने कहा तुम्हारा पानी इसमें गिरता है? बोला हाँ गिरता है. बोला इसका फर्श टूटता है? बोला हाँ टूटता है. बोला फिर तुम नाला बदलो. बोला आप पंच परमेश्वर हो, जो कहोगे मानूंगा, जैसे आज्ञा करोगे ऐसे करूंगा, और जो कुछ कहना हो, लेकिन नाला यहीं बहेगा. और हमारा ये हाल है, इतने सारा सुनने के बाद भी मैं मेरा नहीं जाएगा. और ये सारी कथा इसलिए बताई गई कि मैं मेरा जाए, और हम तो इसमें और मैं मेरा में बढ़ गए कि आज हम पर समझ गए आत्मा है हम. अब तुम कौन होते हो? मैं जानता हूं मैं आत्मा हूं. तो ये विपरीत ज्ञान हो गया सारा. सो ये परमात्मा के गुण, आत्मा के गुण समझने से हमारे को संसार के अंदर जो मोह है उससे मुक्त होना चाहिए. अपनी पहचान हो जाए तो मोह से मुक्त हो जाएगा. एक व्यक्ति चाइना से घूमते हुए आया कि भारतवासी बड़ी विद्वान है पता कर रहा हूं, और वो बहुत बूढ़ा एक महात्मा के पास चला गया. उसको बोला आपके देश में आत्मज्ञान का कितना सा प्रचलन है बताइए कि आपकी अनुभूति क्या है। उसने कहा मेरी अनुभूति यह है कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है, बस इतना ही बोला। तो उसने कहा यह तो आसान है, बच्चा भी समझ सकता है। बोला बच्चा समझ सकता है लेकिन इसको अनुभव करने के लिए उम्र लग जाती। ये समझना तो समझ में आता है, जान लेते हैं, मानने में कई जन्म लगते हैं, बहुत जन्म लगते हैं। और ये समझते भी हैं। अब ये फोन में मेरा है, मेरा समझ रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं मेरा है ना। यहां छोड़ के जाऊं वहां मैं उठ के ही मुझे बुलाएगा पीछे के, कहां जा रहे हो प्रभु, आपका फोन रहेगा, कहेगा हाँ। तो एक तरफ से मैं इसको मालिक बन के बैठो ना, मेरा है मैं कह रहा हूं ना। तो दुनिया की जड़ चीजों को मेरा मानने की मूर्खता हम कर रहे हैं, ये तो हमको जानते भी नहीं है, जानते हैं क्या? तो ये मूर्खता है कि नहीं? मैं मेरा करता हूं, ये मेरे को जानता है, ये तो हुई जड़ की बात और चेतन की बात। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है। मरने के बाद कोई घर में 24 घंटा रखता है किसी को? हाँ, 24 घंटे घर में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हूं ये तो जानते ही नहीं थे, शरीर मानते थे। शरीर में से आत्मा निकल गई तो काम हमारा खत्म हो गया, उसमें कोई रिश्ता नहीं। तो न जड़ हमको जानता है और न ये जो शरीरधारी है ये हमको जानते हैं। इसमें कोई भी किसी को हमसे कुछ लेना देना नहीं। वो मैं माता जी को कभी कथा में कहा था, आपको सुना है, जब प्राण निकल जाएंगे ना तो घर वालों को रोना बाद में आएगा, सोना पहले याद आएगा, कान में निकाल लो। वो उस वक्त और ये उसको दुख नहीं होता है, कहते हैं वो सुनार को बुलाओ, चांदी की कड़ी निकाल लो, ये सोना निकाल लो, खींच खींच के निकालेंगे, छोड़े कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो अब दे रहे हैं ना एक भी नहीं छोड़ेंगे, ये बड़े होशियार है। अब ये सारा खेल देख रहे हैं, ये सारा खेल देख रहे हैं, फिर भी समझ रहे हैं कि नहीं ये सबसे होगा, हम रह जाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा, ये अब एक छोटा प्रहलाद महाराज 5 साल का ये शिक्षा दे रहा है। बचपन से ये शिक्षा देनी चाहिए, तब आदमी वैरागी त्यागी जीवन गुजारेगा और तभी संसार में सुख शांति होगी, कोई एक दूसरे का अहित नहीं करेगा जी। जब बचपन से शिक्षा दी जाएगी तब ये संभव है। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। आपके ऊपर सर खपा खपा के हमारा सर भी गया आपका भी गया, कुछ नहीं होने वाला है। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जय। दाई गोर प्रेमानंदे।